महत्वपूर्ण क्षणों में मैं आपके सामने उस दुर्लभ गोपनीय और महत्वपूर्ण दुर्लभोपनिषद के श्लोकों की चर्चा करना चाहूंगा जो समस्त उपनिषदों में अद्वितीय और श्रेष्ठ है। ऋषियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जहां दुर्लभ उपनिषद की चर्चा होती है वहीं पवित्रता का वातावरण बन जाता है, जहां दुर्लभ उपनिषद के श्लोक का उच्चारण होता है वहीं जीवन में प्रसन्नता और आनंद, आह्लाद और खुशी छलकने लग जाती है, और जहां दुर्लभ उपनिषद के पदों को, श्लोकों को गेय अवस्था में कोई गाता है, सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वह स्वतः साधक बन जाता है, स्वतः सिद्ध बन जाता है, समस्त सिद्धियां स्वतः उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं, उसको साधना करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नहीं आवश्यकता होती कि ये श्लोक अपने आप में दिव्य और चैतन्य है। इन श्लोकों की रचना ही इस प्रकार से हुई है कि सुनने वाले के हृदय पर, प्राणों पर, देह पर, चैतन्यता पर प्रहार करती हैं, प्रभाव डालती हैं और उसके सारे शरीर को साधनामय बना देती हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि वास्तव में वे अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके घर में दुर्लभोपनिषद होता है। वास्तव में उनके पुण्य उदय होते हैं जब वे दुर्लभोपनिषद की चर्चा करते हैं। वास्तव में उनके पूर्वजों का पुण्य उसके जीवन में अवतरित होता है जब वह दुर्लभोपनिषद के श्लोकों को बोलता है, उच्चारण करता है, और वास्तव में ही जब उसका सौभाग्य प्रारंभ होता है, जब उसका शुभ फल प्रारंभ होता है, जब उसका अच्छा समय शुरू होता है, तब उसके जीवन में, उसके घर में दुर्लभोपनिषद के श्लोक उच्चरित होते हैं और वह सुनता है। दुर्लभोपनिषद के प्रारंभ में ऋषि ने आप्त वाक्य में स्पष्ट किया है कि साधना और सिद्धियां तो स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, उन साधनाओं को और उन सिद्धियों को करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसने दुर्लभोपनिषद को सुना हो, पढ़ा हो, उच्चरित किया हो और नित्य श्रवण किया हो, और जो 108 दिन तक नित्य दुर्लभोपनिषद की चर्चा करता है या सुनता है, उसको प्रत्येक प्रकार की सिद्धि अपने आप में सिद्ध हो जाती है। वह चाहे महाकाली हो, या वह चाहे महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, भैरव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देवता है, और किसी प्रकार की साधना या सिद्धि हो। वास्तव में यह एक अद्वितीय और दुर्लभ उपनिषद है जिसको मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। इसके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को आपके सामने रख रहा हूं, और यह आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके घर में दुर्लभ उपनिषद है। मगर दुर्लभ उपनिषद के प्रारंभ में कहा गया है कि गुरु मुख से उच्चरित दुर्लभोपनिषद ही घर में गेय हो, क्योंकि सीधा संबंध जब गुरु ने बोला और आपके घर में उच्चरित हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि गुरु स्वयं आपके घर में अवतरित हुए, आपके घर में आए बैठे, आपने उनकी वाणी से दुर्लभोपनिषद के श्लोकों को सुना। यह जीवन का सौभाग्य कहा जाता है, यह जीवन की श्रेष्ठता कही जाती है। और मेरे जीवन का अनुभव यह रहा है कि दुर्लभोपनिषद सुनने से और सुनने मात्र से ही आधी से ज्यादा सिद्धि तो स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्रत, उपवास, पूजन, अर्चन, चिंतन, चाहे किसी प्रकार की साधना या आरती हो, उससे पहले दुर्लभोपनिषद को अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य उच्चरित करना चाहिए, घर में अवश्य बजाना चाहिए और घर के वातावरण को पवित्र और दिव्य बनाना चाहिए। क्योंकि दुर्लभोपनिषद की चर्चा होने से या इसकी आवाज उच्चरित होने से समस्त देवता स्वतः घर में आते ही हैं, समस्त ऋषि उसके घर में पदार्पण करते हैं, उन ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है, उन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि जहां दुर्लभोपनिषद है वहां समस्त देवताएं हैं, वहां समस्त सिद्धियां हैं, वहां समस्त पूर्णताएं हैं, वहां समस्त श्रेष्ठताएं हैं। इसलिए यह उपनिषद अपने आप में गोपनीय रहा, इसलिए यह उपनिषद अपने आप में कम लोगों को ज्ञात हो सका। वशिष्ठ ने स्वयं कहा कि दुर्लभ उपनिषद जैसी ग्रंथ और श्लोक तो अपने आप में दूसरे बन ही नहीं सकते। विश्वामित्र ने कहा कि मेरी समस्त साधनाओं का सार दुर्लभ उपनिषद है, और शंकराचार्य ने कहा कि मैं जो कुछ हूं उसका आधार दुर्लभ उपनिषद है। इसका तात्पर्य यह है कि दुर्लभ उपनिषद वास्तव में ही कोई अद्भुत कृति है। इसलिए कृति अद्भुत है कि किसी एक ऋषि ने इस दुर्लभ उपनिषद के श्लोकों की रचना नहीं की। समस्त ऋषियों के शरीर से निकले हुए तेज पुंज ने, उस तेज पुंज ने एक आकार ग्रहण किया, एक ब्रह्मत्व ग्रहण किया, और उसके मुख से इन श्लोकों का उच्चारण हुआ। जिस प्रकार से समस्त देवताओं के शरीर से जो तेज पुंज निकला वो भगवती जगदम्बा बनी, ठीक उसी प्रकार से समस्त ऋषियों, योगियों, महर्षियों और गुरुओं के शरीर से जो तेज पुंज प्रकट हुआ, उस तेज पुंज के माध्यम से इस ब्रह्मत्व की देह से यह दुर्लभ उपनिषद अवतरित हुआ, उच्चरित हुआ। इसलिए दुर्लभ उपनिषद की महिमा अपने आप में अद्वितीय मानी गई है। दुर्लभ उपनिषद अपने आप में गुरु चिंतन है, गुरु मनन है, और जहां हम गुरु शब्द का उच्चारण करते हैं वहां समस्त तीर्थों का उच्चारण करते हैं। जहां गुरु शब्द हमारे होठों से निकलते हैं वहां समस्त देवताओं का उच्चारण होता है। जहां हमने गुरु बोला वहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश अवतरित होते ही हैं, क्योंकि गुरु शब्द अपने आप में इतना नगण्य, ओछा और तुच्छ शब्द नहीं है। यदि हम इसकी गरिमा समझें, यदि इसकी महत्ता समझें, यदि इसके मूल्य का आंक सकें, तो अपने आप में यह शब्द दिव्य और पवित्र और उच्च कोटि का है। और इसी श्लोक में, इन श्लोकों में गुरु से संबंधित उन पदों की रचना की गई है जो पद, जो श्लोक अपने आप में अद्वितीय हैं। कुछ कुछ श्लोक या कोई श्लोक ऐसे होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण मात्र से ही देवता सामने प्रकट हो जाते हैं। ये श्लोक भी वैसे ही हैं। इनके उच्चारण मात्र से ही समस्त देवता स्वयं उच्चारणकर्ता व्यक्ति के सामने उपस्थित होते ही हैं, दृश्य अदृश्य रूप में। समस्त ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर उसके सामने खड़े होते हैं हाथ बांध करके, क्योंकि वहां पर दुर्लभ उपनिषद का उच्चारण होता है, क्योंकि वहां दुर्लभ उपनिषद को सुना जाता है। और जहां दुर्लभ उपनिषद को सुना जाता है या उच्चारण होता है, उसके घर के समान तो देवता का स्वर्ग भी नहीं बन सकता। इंद्र की पुरी भी अपने आप में नगण्य और तुच्छ मानी जाती है, क्योंकि वहां पर गुरु चर्चा होती है, गुरु का चिंतन होता है, गुरु के हृदय का आगार होता है, गुरु के हृदय से भाव भूमियां स्पष्ट होती हैं, और हम उन तत्वों को, उन रचनाओं को स्पष्ट करते हैं जिनके माध्यम से हम गुरु पद विन्यास को समझ सकें, गुरु के चिंतन को समझ सकें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि समस्त देवताओं और समस्त ऋषियों, समस्त देवर्षियों और समस्त महर्षियों के शरीर के तपोपुंज का समग्र स्वरूप है। इसलिए ये श्लोक सामान्य किसी मनुष्य या देवता का बनाया हुआ नहीं है, किसी ऋषि या यक्ष का बनाया हुआ नहीं है। ये तो अपने आप में एक अद्वितीय चिंतन है, अद्वितीय भावभूमि है, अद्वितीय श्रेष्ठता है। और मैं आज पहली बार उन महान और अद्वितीय श्लोकों को उच्चारण कर रहा हूं, जिससे कि आपका जीवन पवित्र हो सके, दिव्य बन सके, आप सही अर्थों में साधक बन सके, आप सही अर्थों में पूर्णता प्राप्त कर सके, आपके घर में पवित्रता का वातावरण बन सके, आपके घर में सुख सौभाग्य आ सके, आपके जीवन की दरिद्रता मिट सके, आपके जीवन के कष्ट और अभाव दूर हो सके, आपके परिवार में एक श्रेष्ठ वातावरण बन सके, और समस्त देवता आपके घर में निवास कर सके, समस्त ऋषि आकर के आपको आशीर्वाद दे सके, और आपके घर के संताप, आपके घर के दुख, आपके घर की परेशानियां, आपके घर की चिंताएं दूर होकर के आप जीवन में पवित्रता और श्रेष्ठता अनुभव कर सके, और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सके जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जो आपके जीवन का ध्येय है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है। और आप जब इन श्लोकों को सुने, बजाएं, अनुभव करें या उच्चारण करें, तब अत्यंत पवित्र और दिव्य भाव मन में लाकर के अपने सामने प्रत्यक्ष या चित्रमय गुरु के दर्शन करके, उनको पूजा करके, उनकी अर्चना करके, उनके प्रति प्रणम्य होकर के, साष्टांग दंडवत करके, अपने आप को गुरु के हृदय से जोड़ते हुए इन श्लोकों को सुने, इन श्लोकों को कानों के माध्यम से अपने हृदय पर, प्राणों में, चेतना में उतारें, घर के समस्त वातावरण में इन श्लोकों का गुंजरण करें, अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्र वधुएं, घर के परिवार के सदस्य, इनको सुने और उनका जीवन भौतिकता से कट करके एक पवित्र बन सके, एक दिव्य बन सके, एक चेतना बन सके, एक सुसंस्कारित बन सके, बच्चों में अच्छे संस्कार आ सके, बड़ों के प्रति आदर सम्मान उनके हृदय में आ सके, उनके घर में देवता खेल सकें, गणपति शिव विष्णु ब्रह्मा इंद्र मुर्दगण सभी उनके घर में स्थायी निवास कर सकें, लक्ष्मी और अटूट लक्ष्मी का निवास उसके घर में हो सके, इसलिए तो इस दुर्लभ उपनिषद की रचना हुई है, इसलिए तो दुर्लभ उपनिषद को जीवन का श्रेष्ठतम उपनिषद माना है, इसलिए तो महर्षियों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि यह मनुष्यों के द्वारा उच्चरित उपनिषद नहीं है, यह तो समस्त योगियों का तपपुंज स्वरूप है। और मैं उन्हीं श्लोकों को आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं, उच्चरित कर रहा हूं। गुरुर्वै सदां पूर्वमदैव तुल्यं प्राणोऽवदार्यैव हितं सदैव चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। मैं इस जीवन में क्यों आया हूं, मेरे जीवन की डोर कहां बंधी हुई है, ईश्वर ने मेरा जन्म क्यों किया है, मैं इस पृथ्वी तल पर क्यों हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इनको तो केवल गुरुदेव आप ही समझा सकते हैं और कोई समझा भी नहीं सकता। और सभी तो जीवन के बंधन केवल स्वार्थमय बंधन है, जिनसे मैं जकड़ा हुआ हूं, उन पासों से, उन रस्सियों से, उन रज्जुओं से मैं बंधा हुआ छटपटा रहा हूं, वेदनाग्रस्त हो रहा हूं, अपने आप में दुखी और संतप्त हो रहा हूं, प्रत्येक पल अपने आप में व्यथित होता हुआ निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूं। मेरे जीवन में सुख नहीं है, मेरे जीवन में चिंतन नहीं है, मेरे जीवन में सौभाग्य नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। और मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य केवल अपने जीवन को समझना है, और मुझे समझाने के लिए, मुझे यथार्थता से परिचित कराने के लिए केवल संसार में कोई शक्ति, कोई स्वरूप, कोई बिंदु है तो केवल आप हैं। इसलिए गुरुदेव, मैं अत्यंत भीगे नैनों से, गदगद कंठ से, भाव विवल वक्षस्थल से आपको दंडवत प्रणाम करता हुआ, आपके चरणों को पकड़ता हुआ, आपके चरणों पर अपने सिर को रखता हुआ प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे उस मर्म को, उस रहस्य को, उस चिंतन को समझाएं जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, जीवन की पूर्णता है, क्योंकि मैं तो केवल आपका हूं और गुरुदेव आपकी शरण में हूं, और निश्चय ही गुरुदेव केवल और केवल मात्र आपकी शरण में हूं। गुरुवै प्रपन्नार्तवैवाम वदैवम अत्योद्भताम वै प्रहितम सदैव देवोत्तमेव भवतम सहि चिन्त्य रूपम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम। लोग कह रहे हैं कि मैं देवताओं की आराधना करूं, कौन से देवता की आराधना करूं, हजारों लाखों देवता हैं, मैं किन किन के सामने गिड़गिड़ाऊं, किन के सामने अपनी चौखट पर अपने सिर को फोड़ूं, कहां कहां जाकर के मैं अपनी याचना करूं, मैं दरिद्र भिखारी होकर के किन किन देवताओं के पास भीख मांगता फिरूं, और वे मुझे दे भी क्या सकेंगे, उन देवताओं के पास है भी क्या देने के लिए, वे तो स्वयं आपके सामने हाथ बांधे हुए खड़े हैं, और जो आपके सामने हाथ बांधे हुए खड़े हैं ये देवता भी आपसे बहुत कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, तो फिर मैं उन भिखारियों के पास क्या जाऊं, फिर तो मैं आपके पास सीधा आना चाहता हूं, फिर मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूं, फिर मैं आपके सामने उन स्थितियों को प्राप्त करना चाहता हूं जो आपसे प्राप्त हो सकता है। यदि आप देवताओं को देने में समर्थ हैं तो निश्चय ही फिर आप हमें भी देने में समर्थ हैं, मुझे भी देने में समर्थ हैं, क्योंकि मैं देवताओं से परिचित नहीं हूं, न देवता मुझसे परिचित हैं, मैंने देवताओं को देखा नहीं है, मैंने चित्रों के माध्यम से देवता के अंकन को देखा है, हो सकता है वह चित्र सही हो सकता है वह चित्र गलत हो, कोई जरूर नहीं है कि जैसा चित्र में मैंने देवता को देखा है, ब्रह्मा को देखा है, विष्णु को देखा है, रुद्र को देखा है, ठीक उसी रूप में वह देवता हो, मैं नहीं समझ सकता। यह तो चित्रकार की एक भावना है जो अपने उसने कागज पर उतारी है, जो कपड़े पर उतारी है, उस चित्रकार ने उस देवता को देखा नहीं, केवल कल्पना के माध्यम से उनके स्वरूप बिंब को उस कपड़े पर कागज पर उतारा है, इसलिए कागज पर कपड़े पर देवता का चित्र है, जो मूर्ति है, जो चित्र है, वह सब मैं अपने आप में अधूरा है, क्योंकि मैं देवताओं से परिचित नहीं हूं। परंतु गुरुदेव, मैं आपसे परिचित हूं, मैंने आपको देखा है, मैंने आपके सारे शरीर को स्पर्श किया है, मैं आपके चरणों में बैठा हूं, आपकी आंख, आपकी नाक, कान, हाथ, पांव, वक्षस्थल, सिर और गर्भोन्नत भाल, इन सबको मैंने अपनी आंखों के माध्यम से अपने हृदय में उतारा है, इसलिए मैं आपसे अत्यधिक परिचित हूं। आपसे परिचित हूं और आप तो दानी हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, अद्वितीय हैं, ज्ञानी हैं, चेतना पुंज हैं, आप तो बहुत कुछ देने में समर्थ हैं। समस्त ब्रह्मांड को जो देने में समर्थ है, वह मेरे अकिंचन व्यक्ति को देने के लिए तो उनके लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं, अत्यंत सरल और सामान्य सी बात है। इसलिए मैं तो आप में ही समस्त देवताओं को देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समस्त आपके शरीर में समाहित हैं। जहां जहां भी, जिस रोम में भी मेरी दृष्टि पड़ती है, वहां एक नवीन देवता के दर्शन मुझे होते हैं। और ये सारे देवताओं का आगार समूह को जब मैं साक्षात अपने सामने देखता हूं, तो मैं भाव विभल हो जाता हूं, गदगद हो जाता हूं, अपने आप में मैं रह नहीं पाता हूं। इसीलिए आप मुझे देवताओं की आराधना करने के लिए मत कहिए, मैं देवताओं की आराधना चाहता भी नहीं हूं। मेरे सामने तो प्रत्यक्ष देवता है, सशरीर देवता है, चैतन्य पुंज देवता है, फिर इस जीवित जागृत देवता को छोड़ करके उन पाषाण मूर्तियों को और चित्रों को पूजने से क्या होगा। मैं तो गुरुदेव केवल मात्र आपकी शरण में हूं, और एकमात्र आपकी ही शरण में हूं। सतम वै सदानम देवालयो वै प्रातोर्भवे वै सहितम नदीर्वै पूर्तम परां पूर्णमदैव रूपम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम। और मैं काशी और कांची, हरिद्वार और मथुरा तीर्थ स्थलों पर जाकर के भी क्या कर लूंगा, उस गंगा में बार बार डुबकी लगाने से भी क्या हो जाएगा। अगर गंगा में डुबकी लगाने से पवित्र और दिव्य बन जाता, तो सारी मछलियां अपने आप में पवित्र और दिव्य बनी हुई हैं, सारे मेढक अपने आप में पवित्र दिव्य हैं। यदि काशी में रहने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है, तो वहां स्वान और खर, कुत्ते और गधे बहुत घूमते हैं, वे सभी अपने आप में पवित्र दिव्य आत्मा बन जाते हैं। वहां जाने से कुछ नहीं हो सकता, वहां कुछ संभव है ही नहीं। उन देवालयों में तो एक पत्थर की मूर्तियां हैं, जो बोल नहीं पाती, जो मेरी बात सुन भी नहीं पाती, उन पत्थरों को मैं कहने से अपने सिर को फोड़ने के बराबर है। वे मेरी बात नहीं सुन पाते, मैं अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पत्थरों को कहने से कोई लाभ नहीं होता। मेरे लिए हरिद्वार और मथुरा, काशी और कांची अपने आप में नगण्य हैं। मैं तो आपको और आपकी देह को पूर्ण रूप से देवालय मानता हूं। पूरा मंदिर है यह जो मेरे सामने है, और यह मंदिर जो आपकी देह है, यह मंदिर के रूप में है, जो जीवित और जागृत मंदिर है, चैतन्य मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, बोलता हुआ मंदिर है, वाचाल मंदिर है, अपने आप में आशीर्वाद देता हुआ मंदिर है। आपके दोनों पैर इस देवालय के स्तंभ हैं, अच्छे स्तंभों पर यह मंदिर टिका हुआ है, और इन स्तंभों पर जो मूर्ति स्थापित है, आपके प्राणों की, आपके हृदय की, आपकी चेतना की, वह आपका हृदय स्थल अपने आप में गर्भगृह है। उस गर्भगृह में जाकर के जब मैं खड़ा होता हूं, तो मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है, भाव विभल हो जाता है, चेतना युक्त हो जाता है, एक एक रोम खड़ा हो जाता है, रोम रोम चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, पुकारने लग जाता है, और उसके गुरुदेव के अलावा कोई शब्द निकलता नहीं। मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है, भाव विभल हो जाता हूं, मेरा सारा शरीर थरथराने लग जाता है जब मैं इस जीवित जागृत उस मूर्ति को देखता हूं जो धड़कता है। और इस गर्भगृह में जो मूर्ति है, जो हृदय है, जो प्राण है, जो आपका यह शरीर है, वो अपने आप में इतना स्पंदनशील है, अपने आप में आह्लादकारक है, उसको देखते ही मेरे सारे शरीर में स्फुरण हो जाता है, सारे शरीर में चेतना आ जाती है, सारे शरीर में ऊर्जस्वीता आ जाती है, ऐसा लगता है कि मेरा सारा शरीर अपने आप में प्रसन्नता के आवेग में उछलने लग गया है। और इस गर्भगृह के ऊपर जहां मूल मूर्ति स्थापित है, जहां आपका हृदय है, इसके ऊपर आपके शिर के रूप में शिखर है, जो मंदिरों के ऊपर शिखर होता है, उस शिखर को देख करके ऊंचाई का भाव होता है, हिमालय का भाव होता है। आपका गर्भोन्नत सिर आपका दर्प युक्त सिर, आपका दीदीप्यमान सिर, लाठ, भाल, आंखें, नेत्र, आपका मुंह, आपकी जिह्वा, आपका सारा शरीर और आपका चेहरा अपने आप में उस मंदिर के उस शिखर की तरह है, जिनको देखने से अपने आप में पवित्रता का अवगाहन होता है। ऐसा लगता है उसको देखने से कि जैसे हजार हजार तीर्थों में मैंने स्नान कर लिया हो, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सब सातों समुद्रों में स्नान कर लिया हो, अवगाहन कर लिया हो। ऐसा लगता है कि स्वयं गंगा आकर के मुझे स्नान करा के चली गई है। और जहां पर आपके नेत्रों की कृपा वृष्टि होती है, जहां नेत्रों से निकल करके जो आनंद की वर्षा होती है, वह तो वही समझ सकता है जो आपके पास में खड़ा होकर के उस कृपा दृष्टि से भीगा है, उस कृपा के आनंद से भीगा है, आपके नेत्रों से निकलते हुए आनंद में वर्षा की है। उसके समान तो धन्य कुछ हो ही नहीं सकता, उसके समान तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बहुत अपने आप में एक अद्वितीय चिंतन है, अद्वितीय धारणा है। मैं इस जीवित जागृत मस्तिष्क युक्त, शिखर युक्त, इस गर्भगृह युक्त, इस स्तंभ युक्त, इस चलते फिरते इस मंदिर को छोड़ करके और किस मंदिर में जाऊं? विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा का मंदिर, कृष्ण और राम का मंदिर और अन्य मंदिर मेरे लिए क्या उपयोगी है, कैसे उपयोगी है? उन मंदिरों से मुझे क्या मिलने वाला है? यदि मैं इस मंदिर को ही नहीं समझ सका, यदि मैं इस मंदिर की पूजा नहीं कर सका, यदि इस मंदिर को स्वच्छ और पवित्र और दिव्य नहीं रख सका, इस मंदिर में सेवा शुश्रूषा नहीं कर सका, तो फिर मेरा सब कुछ जाना व्यर्थ है। क्योंकि इस मंदिर में समस्त समस्त देवता निवास करते हैं। इस मंदिर को देखने के लिए तो देवता तरसते हैं, इस मंदिर को स्पर्श करने के लिए देवता अपने आप को न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं। गुरुदेव, आप मुझे किसी नदी और किसी तीर्थ और किसी मानसरोवर, किसी गंगा और किसी हरिद्वार और किसी समुद्र के पास जाने की आज्ञा मत दीजिए। मुझे उसमें कोई मोह नहीं है, वे तो व्यर्थ पानी के बहाव हैं, वे तो मछलियों के एक सागर हैं, वे तो खारा समुद्र है, वह तो केवल एक झील है, निर्जीव, जो बोल नहीं सकती। मुझे ऐसे कोई तीर्थों में जाने से न प्रयोजन है न आवश्यकता है, क्योंकि जहां समस्त तीर्थों का स्नान मैं केवल आपके नेत्रों से निकलती हुई कृपा से कर सकता हूं, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली तो कुछ हो ही नहीं सकता। वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूं, वास्तव में मैंने जीवन के पुण्य किए होंगे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, वास्तव में मेरे पुण्यों का उदय हुआ होगा कि आप सजीव रूप में मेरे सामने हैं और मैं इस पीढ़ी में, इस युग में आपके सामने उपस्थित हूं। वास्तव में आपके नेत्रों की वर्षा से मैं आप्लावित हूं, वास्तव में आपके नेत्रों से जो आनंद की वर्षा होती है उससे भीगा हुआ अपने आप में अत्यंत मस्ती के साथ नाच रहा हूं, अपने आप में छलछला रहा हूं, अपने आप में कूद रहा हूं, उछल रहा हूं, आनंद से भर उठा हूं। क्योंकि गुरुदेव, मैं केवल आपकी शरण में हूं, क्योंकि गुरुदेव, केवल और केवल मात्र में आपकी ही शरण में हूं। अदोरियम वदेवम चिंतम सहेतम पूर्वोत्तरूपम चरणम सदेयम आत्मो सताम पूर्वमदैव चिंत्यम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम। वह तो मूर्ख और मूढ़ होगा जो आपके चरण छोड़कर के इधर उधर भटकता होगा, उसके पाप ही उसके बीच में आए होंगे जो आपकी दृष्टि से ओझल होता होगा, उसका जीवन का दुर्भाग्य होगा कि वो आपसे दूर खड़ा होकर के भी सांस ले रहा होगा। आपसे दूर रहकर के सांस लेने की कल्पना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। जिस प्रकार से समुद्र से और नदी से मछली को बाहर निकालने के बाद जिस प्रकार से मछली तड़प कर मर जाती है, उस प्रकार से आपसे अलग होकर के मर क्यों नहीं जाते, तड़प करके समाप्त क्यों नहीं हो जाते? जिंदा रहने का हक क्या है, अधिकार क्या है? जिस प्रकार से बिना चांद को देखे चकोर अपने सिर को फोड़ करके समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हम सिर के फोड़ के समाप्त क्यों नहीं हो जाते? आपका वियोग हम कैसे सहन कर सकते हैं? यह कैसे संभव है कि आप दूर हो और हमारे प्राण हमारे शरीर में टिके रह सकें? ऐसे प्राणों की जरूरत भी नहीं है। ये प्राण तो व्यर्थ हैं, तुच्छ हैं, अपने आप ऐसा लग रहा है कि जैसे मुर्दा शरीर में धड़क रहे हो। मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे ऐसे प्राण भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी धड़कन भी नहीं चाहिए जो धड़कना बंद नहीं कर देती हो। उस धड़कन का महत्व और मूल्य क्या है जो केवल एक धड़क करके जिंदा रह जाती है? आप हो तो जीवन है, आप हैं तो संसार है, आप हैं तो खुशियां हैं, प्रसन्नता है, आह्लाद है, श्रेष्ठता है और दिव्यता है। और अगर आप नहीं हैं और मैं जीवित रहूं, यह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है, यह मेरे जीवन की न्यूनता है, यह मेरे जीवन का अभाव है। वास्तव में मैंने कोई पाप किए होंगे कि मैं आपके वियोग को सहन करते भी जीवित हूं? वास्तव में मेरे जीवन के दुर्भाग्य होंगे कि आप नहीं हैं और मैं सांस ले रहा हूं? वास्तव में मेरे जीवन का ये न्यूनता है कि बिना आपके भी मैं सांस ले रहा हूं, खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं और चल रहा हूं? मैं मर क्यों नहीं जाता? मुझे समझ में नहीं आता कि मृत्यु मुझे दबोच क्यों नहीं लेती, समाप्ति क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि मरने के बाद कम से कम मैं आपके पास तो रह सकूंगा, मरने के बाद मैं आपके चरणों में लिपट तो सकूंगा, मैं आप में अनुरक्त तो हो सकूंगा, मैं आप में अपने आप को लीन तो कर सकूंगा, क्योंकि जहां पर भी मेरी मृत्यु हो वहां से मेरी राख, मेरे देह की राख उड़ करके आपके चरणों में गिरे और उस राख पर आपके पांव पड़े, इससे ज्यादा सौभाग्य मेरे जीवन का क्या हो सकता है। मैं ऐसे देह नहीं चाहता, मैं ऐसा हृदय भी नहीं चाहता, मैं ऐसे प्राणों को नहीं चाहता जो आपके वियोग में, जो आपके अनुपस्थिति में जीवित रह सके, जागृत रह सके, स्पंदनशील हो सके, धड़क सके, ऐसे हृदय से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको देखना चाहता हूँ, मैं तो आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं तो हर क्षण चकोर जिस प्रकार चांद को देखता रहता है उसी प्रकार से मैं आपको देखता रहना चाहता हूँ, मैं तो हर क्षण एक पपिये की तरह केवल गुरु गुरु शब्द को उच्चारण करना चाहता हूँ, हर क्षण आप मेरी आंखों में बसे रहें, हर क्षण मेरी आप कल्पना में बने रहें, हर क्षण मेरी हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ गुरु शब्द का उच्चारण हो, मेरा प्रत्येक शब्द गुरुमय हो, मेरा प्रत्येक चिंतन गुरुमय हो, मेरा रोम रोम आवाज दे सके गुरु गुरु, और इसके अलावा और किसी शब्द का मुझे ज्ञान नहीं हो। न मुझे गायत्री मंत्र की जरूरत है, न किसी काली मंत्र की, न लक्ष्मी मंत्र की, और किसी मंत्र की मेरी आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय मंत्र यदि गुरु मंत्र मेरे पास हैं, तो उससे श्रेष्ठ मंत्र और क्या हो सकता है। जहां परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः है, वहां सब कुछ जीवन का श्रेष्ठता है, अद्वितीयता है, श्रेष्ठता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वे सारे क्षण जो मेरी जिंदगी में प्रभु ने मुझे दिए हैं, वे क्षण आपके साथ व्यतीत हों, आपके आपके लिए व्यतीत हों, मेरा शरीर आपके काम आ सके, मैं आपके चरणों से लिपट सकूं, मैं आपके देह से सुवासित हो सकूं, मैं आपके सुगंध से आप्लावित हो सकूं, मैं चकोर की तरह आपको बराबर टकटकी लगाकर ताकता रह सकूं। और यदि आपसे विरह होना ही पड़े, आपसे अलग होना ही पड़े, तो मछली की तरह तड़फ करके मर जाऊं, कुरंग की तरह उस पत्थर पर सिर फोड़ करके अपने आप को समाप्त कर दूं और मृत्यु मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। मैं तो आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं एक क्षण भी आपकी जुदाई सहन नहीं कर सकूं।